अमाल बाप 15। तब कुछ लोग यहूदा से अंताकिया आए और गैर यहूदी भाइयों को तालीम देने लगे कि
तुम उस वक्त तक नजात नहीं पा सकते जब तक तुम मूसा की शरीयत के मुताबिक खतना ना करवा लो।
पौलुस और बरनबास इस तालीम के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने उन आदमियों से बहस की तो उनके गिरोह ने यह तय किया कि पौलुस, बरनबास और चंद दूसरे लोगों को यरूशलम रवाना किया जाए। ये लोग वहाँ के रसूलों और बुजुर्गों से इस मौजू पर तबादला ख्याल करना चाहते थे। पस कलेसिया ने उनको रवाना किया। वो फेके और सामरिया से गुजरते हुए गए और कहा कि किस तरह गैर यहूदी सच्चे खुदा की तरफ रुजू हुए। इस वाकया से सब भाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई। पौलुस, बरनबास और दूसरे लोग यरूशलम पहुँचे जहाँ तमाम ईमान वाले गिरोह, रसूलों और बुजुर्गों ने उनका इस्तकबाल किया। पौलुस, बरनबास और दूसरे लोगों ने इन सब बातों के मुतालिक बताया जो खुदा ने उनके साथ किया था। यरूशलम में कुछ ईमान वाले का ताल्लुक फरीसियों से था। उन्होंने उठकर कहा,
गैर यहूदी अहले ईमान को खतना कराना होगा। हमें उनसे ये कहना चाहिए कि वो मूसा की शरीयत पर अमल करें।
तब रसूलों और बुजुर्गों ने जमा होकर इस मसले पर गौर करना शुरू किया और काफी बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा,
मेरे भाइयों, तुम अच्छी तरह जानते हो गुज़िश्ता दिनों में क्या हुआ। खुदा ने मुझे तुम में से चुना कि गैर यहूदियों में मैं खुशखबरी की तबलीग करूं। गैर यहूदियों ने जब मुझसे खुशखबरी सुनी तो ईमान लाए। खुदा हर एक आदमियों के दिलों में क्या है जानता है और उन्हें रूहुल कुद्दूस से मामूर करके कबूल करता है, जैसा कि उसने हमारे साथ किया। खुदा के पास वो लोग हमसे कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। जब वो ईमान लाए तो खुदा ने उनके दिलों को पाक कर दिया। तो अब इस तरह का जुआ क्यों उनकी गर्दन पर रखते हो? क्या तुम खुदा को गुस्सा में लाना चाहते हो? हम और हमारे बाप दादा इस बोझ को उठाने के काबिल नहीं। हमें यकीन है कि हम और ये लोग खुदावंद यीशु की फजल से बचा लिए जाएंगे।
तब सारा गिरोह खामोश होकर पौलुस और बरनबास की तकरीर सुनते रहे। पौलुस और बरनबास अजीब निशानियों और मौजजों के बारे में कहते रहे कि खुदा ने उनके जरिए गैर यहूदी लोगों में किया। जब पौलुस और बरनबास ने अपनी अपनी तकरीरें ख़त्म की तो याकूब ने कहा,
ऐ मेरे भाइयों सुनो, समून ने हमसे कहा कि खुदा ने किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार गैर यहूदियों के लिए किया। पहली मर्तबा खुदा ने गैर यहूदियों को कबूल किया और उन्हें अपना बनाया। नबियों के अल्फाज भी उसकी ताईद करते हैं, मैं उसके बाद दोबारा आऊँगा और मैं दाऊद के घर को दोबारा बनाऊँगा। जो गिर चुका है मैं उसके घर के हिस्सों को दोबारा बनाऊँगा, जो गिरा दिया गया है मैं उसके घर को नया बनाऊँगा। तब तमाम लोग खुदावंद की तलाश करेंगे, तमाम गैर यहूदी भी मेरे ही लोग हैं। खुदावंद ने यह कहा और वही है जो यह सब कुछ करता है। ये सारी चीज़ें शुरू ही से जानी गईं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमें गैर यहूदी भाइयों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए जो खुदा की तरफ रुजू होते हैं। इसके बावजूद हमें उनको एक ख़त लिखना होगा और यह सब बातें कहनी होगी कि ऐसी चीज़ें मत खाओ जो बुतों को पेश की गईं। ऐसी गिज़ा नापाक होती है और हरामकारी के गुनाह करें, और खून मत खाओ और ऐसे जानवर मत खाओ जो गला घोंट कर मार दिया गया हो। यह सब चीज़ें मत करो क्योंकि अभी भी यहूदी हर शहर में हैं जो मूसा की शरीयत की तालीम देते हैं, और मूसा की शरीयत के अल्फाज हर सबत के दिन तमाम यहूदी इबादत खानों में कई नस्लों से पढ़े जाते हैं।
रसूलों, बुजुर्गों और तमाम कलेसिया के ईमान वाले गिरोह ने तय किया कि चंद आदमी पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजें और ये कलेसिया यहूदाह को चुना, जिसे बरनबास भी कहा जाता है, और सेलास को चुना। ये लोग माने हुए सरदार और यरूशलम के भाइयों में से हैं। गिरोह ने उन लोगों के साथ खत रवाना किया। खत ये है,
मिन जानिब रसूलों, बुजुर्गों और तुम्हारे भाइयों, अंतकिया, शाम और किलकिया शहरों में रहने वाले तमाम गैर यहूदी भाइयों के लिए, अजीज भाइयों, ہم نے سنا ہے کہ ہماری کلیسیا سے چند لوگ تمہارے پاس آئے ہیں اور وہ تکلیفیں پیدا کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا اس سے تمہیں تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، لیکن ہم نے ان سے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا۔ ہم تمام متفق ہیں کہ چند آدمیوں کو چن کر تمہارے پاس بھیجیں، وہ ہمارے عزیز دوستوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے، برنباس اور پولوس، جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کے لیے وقف کی تھی۔ اس لیے ہم نے یہودا اور سیلاس کو ان کے ساتھ بھیجا، وہ بھی اپنی زبان سے وہی باتیں کہیں گے، کیونکہ ہم نے روح القدس نے طے کیا ہے کہ تمہیں کوئی زیادہ بار نہیں اٹھانا ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ تم کو صرف انہی چیزوں کو کرنا ہے۔ ایسی غذا مت کھاؤ جو بتوں کو نذر کی گئی ہو، ایسے جانوروں کو مت کھاؤ جن کی موت گلا گھونٹنے سے ہوئی ہو، اور آپس میں جنسی گناہ مت کرو۔ اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے۔ والسلام۔
پولوس، برنباس، یہودا اور سیلاس یروشلم سے نکلے اور انطاکیہ پہنچے۔ انطاکیہ میں انہوں نے ایمان والے گروہ کو جمع کیا اور انہیں خط دیا۔ جب شاگردوں نے خط پڑھا تو وہ خوش تھے، خط سے انہیں تسلی ملی۔ یہودا اور سیلاس بھی نبی تھے، جنہوں نے بھائیوں کو کئی باتیں اور نصیحتیں کر کے انہیں مضبوط کر دیا۔ اور اس کے بعد یہودا اور سیلاس کچھ عرصہ ٹھہرے اور نکل گئے۔ انہوں نے بھائیوں کی سلامتی کی دعائیں حاصل کیں۔ یہودا اور سیلاس واپس اپنے بھائیوں کے پاس یروشلم آئے، جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، لیکن پولوس اور برنباس انطاکیہ میں ٹھہرے، اور وہ دوسروں نے لوگوں کو خوشخبری دی اور خداوند کے پیغام کی تعلیم دی۔ چند دن بعد پولوس نے برنباس سے کہا،
ہم نے کئی شہروں میں خداوند کا پیغام سنایا ہے، ہمیں ان شہروں کو دوبارہ واپس جا کر ان سے ملنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے ہیں۔
برنباس چاہتا تھا کہ یوحنا مرقس بھی ان کے ساتھ چلے، کیونکہ ان کے پہلے سفر میں یوحنا مرقس نے انہیں پمفیلیا میں ہی چھوڑ دیا تھا اور ان کے ساتھ کام کو جاری نہ رکھا تھا، اس لیے پولس نے یہ خیال نہ کیا کہ اسے ساتھ لے جائیں۔ پولس اور برنباس میں اس سلسلے میں زوردار بحث ہوئی اور دونوں نے علیحدہ ہو کر الگ راستہ اختیار کر لیا۔ برنباس جہاز سے قبرص گیا اور اپنے ساتھ مرقس کو لے گیا۔ پولس نے سیلاس کو اپنے سفر میں ساتھ لیا۔ انطاکیہ میں بھائیوں نے پولس کو خداوند کی نگرانی میں باہر بھیجا۔ پولس اور سیلاس کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا شام اور کلیکیا سے ہوتے ہوئے گزرا۔